ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पीड़ित और कमजोर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिनिधि सभा बैठक में सांसदों ने कराया सरकार का ध्यानाकर्षण। अर्घ खांची के पारिणी गांव पालिका में बस दुर्घटना, 4 की मौत, 27 घायल। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम के अनुरूप ही अगले आर्थिक वर्ष का बजट तैयार होगा, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। और ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम प्रशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ईरान की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। इसी तरह बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोविता गौतम ने नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी समझौता पेश किया। इससे पहले बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संसदीय दल के उपनेता गणेश पराजुली ने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन के कारण ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को लगभग 2/3 के करीब जनमत मिला है और सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रही है। बैठक के शून्य समय में सांसदों ने 12 परसा औद्योगिक कॉरिडोर में कुछ लोगों द्वारा अनुचित लाभ लेने के आरोप की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसदों ने नदी किनारे पर हो रहे अवैध उत्खनन से पर्यावरण और जनजीवन पर बढ़ते खतरे को रोकने, नारायणी कटान से विस्थापित सुकुमवासियों के उचित प्रबंधन तथा कृषि उपज की सुरक्षा की भी मांग की। बैठक में सांसदों ने दलित, कमजोर और पीड़ित नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता का मुद्दा उठाया। सांसदों ने सुर्खेत की 16 वर्षीय एलिशा बीका की बलात्कार के बाद हुई मृत्यु तथा सिंधुली के 22 वर्षीय श्रीकृष्ण बीका की पुलिस हिरासत में हुई मौत की निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। इसी बीच प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार की नीति एवं कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने के दौरान प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सदन से बाहर जाने की घटना पर जवाब मांगा। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक वैशाख 30 गते बुधवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार विद्यालय स्तर की शैक्षिक और भौतिक आधारभूत संरचना की स्थिति पर विस्तृत अध्ययन कर रही है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि सरकार देश भर के सभी विद्यालय भवनों, खेल मैदानों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा अन्य संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर विद्यालय स्तर की संपूर्ण आधारभूत संरचना का पुनर्संरचना किया जाएगा। मंत्री पोखरेल ने कहा कि एक महीने के भीतर ऐसी परीक्षा परिणाम सार्वजनिक करने की सरकार की प्रतिबद्धता को लागू किया गया है। उन्होंने ऐसी परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा तैयारी कक्षाएं संचालित करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री सुनील लम्साल ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण तथा आधारभूत पूर्वाधार विकास के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत पूर्वाधार विकास समिति की आज हुई बैठक में मंत्री लम्साल ने कहा कि सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सड़क मरम्मत और सुधार परियोजनाओं हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। मंत्री लम्साल ने जानकारी दी कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, ट्रैफिक लाइट विस्तार, नदी किनारे के पास पुल निर्माण, भूस्खलन नियंत्रण तथा सड़क चौड़ीकरण की योजनाएं संचालित करने की तैयारी की जा रही है। अर्घखांची के पारणिनी गांवपालिका 8 स्थित घूमती पालपा सड़क खंड में बस दुर्घटना होने से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 27 यात्री घायल हो गए हैं। जिला प्रहरी कार्यालय अर्घकाची के अनुसार मृतकों में कास्की के पोखरा महानगर पालिका 19 की 78 वर्षीय राम माया बसनेत, उसी स्थान की 78 वर्षीय बिंदु कुंवर, पर्वत की मोदी गांव पालिका 5 की 50 वर्षीय कौशिला रेगमी तथा उसी स्थान के बस चालक 35 वर्षीय रेशम जीसी शामिल है। प्रहरी निरीक्षक झलक प्रसाद शर्मा ने जानकारी दी कि सुपा देवराली से पर्वत जा रही बस सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गिर गई। दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि अन्य 2 की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि घायलों में चार लोगों की स्थिति गंभीर है और उनका इलाज लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, प्रभास पालपा तथा भैरवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र सानोठीमी ने बताया है कि सप्ताह में दो दिन की छुट्टी देने के सरकार के निर्णय के बाद स्कूलों को दी जाने वाली शीतकालीन और वर्षाकालीन छुट्टियों में कटौती की गई है। केंद्र के निदेशक डॉ श्याम प्रसाद आचार्य ने जानकारी दी कि पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई पूरी न होने की स्थिति को देखते हुए शीतकालीन और वर्षाकालीन छुट्टियों की पूर्व निर्धारित 45 दिनों की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक पूरे समय पठन पाठन से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के लिए सभी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइयों, स्थानीय तहों और विद्यालयों से अनुरोध किया गया है। केंद्र ने परिपत्र जारी करते हुए प्रत्येक दिन 15 मिनट प्रार्थना समय और 30 मिनट भोजन समय की व्यवस्था करने को भी कहा है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के कल के निर्णय के अनुसार शैक्षिक संस्थानों में स्वीकृत पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित समय का समायोजन करने के लिए छुट्टियों में कटौती की गई है। पोखरा में संचालित आयुर्वेद अस्पतालों में क्लिनिकों में अवैध तथा निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की खुलेआम बिक्री और वितरण होने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की के नेतृत्व में आज किए गए निरीक्षण के दौरान पोखरा महानगरपालिका 10 बुद्ध चौक क्षेत्र स्थित आयुर्वेद अस्पतालों और क्लिनिकों में ऐसी दवाएं बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी चित्रांत बराल ने जानकारी दी कि औषधि व्यवस्था विभाग से स्वीकृति न प्राप्त करने वाली तथा एक्सपायरी डेट पार कर चुकी दवाओं को बरामद कर नष्ट किया गया है। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मापदंड पूरा न करने वाले, पंजीकरण नवीकरण न करने वाले, दर सूची प्रदर्शित न करने वाले तथा चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए बिना काम पर लगाने वाले अस्पतालों और क्लिनिकों को आवश्यक दस्तावेजों सहित बुधवार को जिला प्रशासन कार्यालय में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान पर फिर हमला होने की स्थिति में यूरेनियम को 90% शुद्धता तक संवर्धित करने की दिशा में कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए युद्ध विराम को व्यापक जनहानि को रोकने वाला कदम बताए जाने के बाद ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने यह टिप्पणी की है। रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यदि फिर से हमला होता है तो ईरान के विकल्पों में 90% यूरेनियम संवर्धन भी शामिल हो सकता है। हम संसद में इस पर समीक्षा करेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने सोमवार को कहा था कि देश अपनी परमाणु तकनीक और यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। 28 फरवरी को तेहरान और अन्य ईरानी शहरों पर अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमले से शुरू हुए 40 दिनों की लड़ाई के बाद ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल ने 8 अप्रैल से युद्ध विराम की घोषणा की थी। युद्ध विराम के बाद ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों ने 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता का एक दौर किया, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पीड़ित और कमजोर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिनिधि सभा बैठक में सांसदों ने कराया सरकार का ध्यानाकर्षण। अर्घखाची के पारणिनी गांव पालिका में बस दुर्घटना, 4 की मौत, 27 घायल। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम के अनुरूप ही अगले आर्थिक वर्ष का बजट तैयार होगा। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। और ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम प्रशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ईरान की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे अब सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।